أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم آل الله من يومنا هذا لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال نكر لها عرش ها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. مؤمنين، یہ سورہ نمل کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے وہ 41 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے، کہا کہ اس کے تخت میں پھیر بدل کر دو، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سے پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے تھا کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جب بلقیس کا تخت آ گیا، آصف نے برقیہ نے جو کلمات پڑھے تھے، جو بھی جو دعا کری تھی، اس سے جب تخت آ گیا، تو اس کے بعد جب تخت آ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس تخت کی صورت بدل دو. تو اس تخت کی صورت بدل دو، شکل و صورت بدل دو، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ان لوگوں میں سے جو ہدایت یافتہ ہے نہیں. یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ جب میں نے اس کی تخت کی صورت بدل دوں گا تو جو ملکہ آنے والی ہے بلقیس، اور جو لوگ ساتھ میں آنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ ان کا یہ تخت ہے کہ کوئی دوسرا تخت ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں عقل کتنی ہے، فہم کتنا ہے، تاکہ اس حساب سے ان سے وہ گفتگو کرے. اگر جاہل ہے تو اس گفتگو کا معیار الگ ہوگا، اگر عقل مند ہے تو اس کا معیار الگ ہوگا. اور بعد میں بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کی کا عقد بھی ہونے والا تھا، تو دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا فہم بلقیس نے کہ اس لائق ہوتی کہ اسے عقد کیا جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے حکم دیا. تو فلما جاءت قیل ہاکزا عرش کی قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین. تو جب وہ ترجمہ اس طریقے سے، جب وہ حاضر ہوئی، ملکہ حاضر، تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، اور ہمیں اطاعت گزار ہو چکے ہیں. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت کیا اسی طریقے کا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے، کیا اسی طریقے کا ہے، تو اس کا جواب بھی جیسا جواب تھا اس نے ویسے جواب، جیسا سوال تھا ویسے جواب دیا. کیا کہا؟ کہ گویا یہ وہی تخت ہے. اس نے بھی اسی طرح سے جواب دیا. دیکھیں گہرائی دیکھیں آپ آیت میں، کیونکہ اس کو لگا، اس کو معلوم تھا کہ یہ تخت اسی کا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھے، تو اس نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ گویا یہ وہی اسی طریقے کا وہی تخت ہے گویا، کیونکہ وہ اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ تخت اسی کا، صورت بدل دی گئی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس نے بھی اسی طریقے سے انٹیلیجنٹلی جواب دیا، ذہن کو موجود رکھ کے جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے. اور پھر اس نے کیا کہا کہ ہم پہلے ہی جان گئے تھے، اور ہم تو اطاعت گزار ہو چکے تھے. ہم تو کیا جان گئے تھے؟ حالت کہنا ہو وہ اوتینا علم من قبلنا، ہم کو پہلے علم دے دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے. کس چیز کا دیا گیا علم بلقیس کو؟ بلقیس کو علم یہ دیا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اور اس طریقے سے وہ اطاعت گزار ہو چکی تھی سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ اس کے ہیبت بیٹھ گئی تھی. لیکن ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، آگے کی آیت مسلمان ہوئی، جو محل میں جاتی ہے نا اس کے مسلمان ہوتی ہے، وہ آیت آنے والی ہے. وہ صدہا मा कानत ताबुदून मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिनल कौमिन काफिरी, और वो अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत किया करती थी उसने उसे रोके रखा था, उसका ताल्लुक एक काफिर कौम से था। तो क्या कि चूंकि उस सूरज को सजदा करती थी तो उस वजह से वो अल्लाह की इताअत न करती थी, हालांकि अल्लाह को मानती थी लेकिन सजदा वो सूरज का करती थी, तो वो मुशरिका थी। तो अल्लाह ने कहा इन्हा कारण जिन कौम काफरी, वो उसका ताल्लुक काफिर कौम से ताल्लुक था उसका। قيل له ادخل الصح فلما رأته حسبته دجة وكشفنا عن ساقيها قال انه سرحم سرحم امرأة من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين। ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلے, اس نے جو دیکھا تو समझी के पानी की लहरें हैं और उसने अपने पांच छह पिंडियों से उठा लिए। सुलेमान ने कहा ये शीशों से चिकना किया हुआ महल है। मलका ने कहा मेरे परवरदिगार मैंने खुद पर जुल्म ढाया है, मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कबूल कर ली। जब मलका से कहा गया कि मेरे में चले आप, तो उसने अपने कपड़े पांचे पिंडियों से उठा लिए क्योंकि उसको ये लगा कि महल में पानी पानी है, पानी पानी है। हालांकि वो दरहकीकत में जो महल था वो शीशों से चिकना करा गया था, शीशों से चिकना करा गया था। तो सुलेमान ने कहा कि ये शीशों से चिकना करा हुआ महल है। कहा मैं जब उसने ये देखी शान और शौकत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो महल की शान देखी, तो उसने कहा परवरदिगार मैंने खुद पर जुल्म ढाया है, मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। तो उसने सब जितनी शान देखी, जिस तरीके से उसका तख्त आ गया पलक झपकते ही उससे पहले, वो जिस तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत थी और हुकूमत थी इंसानों पर जिनों पर परिंदों पर, जिस तरीके से उसने देखा इतना शानदार महल है, तो उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैंने अल्लाह सुब्हानहु ताला कहा मेरे परवरदिगार मैंने खुद पर जुल्म ढाया कि मैंने अब तक इस्लाम कबूल न करा था और उस वाहिद परवरदिगार में इबादत न करी थी। फिर क्या कहा मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली है। तब जाकर मुसलमान हुए जब उसकी शान शौकत देखी, मोमिनी की शान और शौकत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी और जो बिल्किस ने देखी वो छोटी थी कुरान हकीम और अलैहिस्सलाम के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुरान की शान 114 सूरह है, सरकार आलम अहले बैत, हमको हमारा दिल में कितना इमाम होना चाहिए, कितना किस मुकाम का हमारा इमाम होना चाहिए। तो इसमें तफसील में यह है कि उस महल के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि पहले पानी भरो और पानी के ऊपर शीशे लगा दो, तो शीशे साफ सुथरे थे तो ऐसा लगता था कि पानी पानी, तो इस तरीके से उसने अपने कपड़े उठा लिए थे। तो फिर वो मुसलमान हो गए। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हान अल्लाह जो किस्सा बयान करा समूद का किस्सा बयान करा अगली आयत में, वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम सालहन ان يعبدوا الله فاذاهم فريقان يختصمون, और हमने قوم समूद की तरफ उनके भाई साले को इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो लोग फरीक हो गए जो आपस में झगड़ने लगे। قوم समूद की तरफ साले अलैहि सलाम को भेजा था, अरे साले अलैहि सलाम को कहा भाई क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी लोगों से, इसलिए कहा भाई है। तो जब उन्होंने लेके आया अल्लाह का पैगाम तो वो दो फरीक हो गए, एक मोमिन और एक काफिर, तो आपस में उनमें झगड़े शुरू हो गए। हर जगह ये सही हुआ, हर जगह मोमिन काफिर का सिलसिला चला। काला या कौमी लिमतस्ताजिलून बिस्सय्यिआति क़ब्ल अल-हसना लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। उन्होंने कहा ए मेरी कौम के लोगों, भलाई से कब्र बुराई के लिए क्यों जल्दी कर रहे हो, तुम अल्लाह से मगफरत तलब क्यों नहीं करते, हो सकता है कि तुम पर रहम फरमाया जाए। इस आयत की तफसीर इस तरीके से है कि यह आयत का नुजूल जब हुआ था कि जब उन जालिमों ने ऊँटनी के कूचे काट दी थी और वो फोत हो गई थी, जब ऊँटनी के कूचे काटी और वो हलाक हो गई तो फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब ये लोग अब इन पे जल्द अजाब आने वाला, जब जल्द अजाब आने वाला तो साले रसाम ने कहा कि जल्द अजाब आने वाला, तो उन्होंने कहा कि तुम सच्चे तो नहीं, क्या होगा इतने इतने बदबख्त लोग थे, एक तो पहले उसको हलाक करा, फिर जब उन्होंने कहा साले रसाम ने कि तौबा करो जल्द अजाब आने वाला, तो बोले कि सच्चे हो अजाब जल्दी लेके आओ। ये आयत पूरे कुरान में है। तो उस वक्त साले अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों भलाई से कब्र बुराई के लिए क्यों जल्दी कर रहे हो, इतने कम वक्त लोग थे, कहा जल्दी अजाब लेके आओ। तो साले अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम के लोगों भलाई से कब्र बुराई के लिए क्यों जल्दी कर रहे हो, तुम अल्लाह से मगफरत तलब क्यों नहीं करते हो सकता है कि तुम पर रहम फरमाया जाए, हो सकता है तुम पर रहम फरमाया जाए। ये इस तरीके से सरकशी की इंतहा है। आज भी ऐसे सरकश लोग हैं, मतलब क्या आप बोलो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं आखिरत नहीं है और हो तो दिखा दो, आज इस तरह के लोग कौम इस तरह की है। तो फिर उनका जवाब क्या था, एक जहालाना जवाब था, क्या कहा उन्होंने, कालू तैयरना बिका वो मम मा का बल अंतुम कौम तुफ्तनु, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बदशगुन पाया। साले ने कहा तुम्हारा अस तुम्हारी अस नहुसत तो अल्लाह के यहाँ है, बल्कि तुम लोगों की तो आजमाइश की जा रही है। तो क्या कहा उन्होंने साले को, हमने कि तुम और तुम्हारे साथी बदशगुन है, क्या कहा तुम जब से आए हो हम तो मुसीबत आना शुरू हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला भेजता था आज जब कौम नहीं सुनती थी, तो क्या कहा तुम लोग बदशगुन हो। तो ये जो अकीदा है जो बदशुकनी का इस्लाम में, इसको कुफ्र करार दिया गया है। इसके बारे में सरकार की हदीसें भी हैं, यह सरकार ने फरमाया कि बदशुकनी कुफ्र है, कोई हम में से नहीं है और अल्लाह पे तवक्कुल इसको नाबूद कर देता है। तो मोमिन के लिए कोई बदशुकनी नहीं है, बदशुकनी नहीं है मोमिन के लिए, सिर्फ तवक्कुल अल्लाह। तो फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने, साले सलाम ने कहा कि तुम्हारा असली नहुसत तो अल्लाह के यहाँ है, तुम्हारी नहुसत तो अल्लाह के यहाँ है, बल्कि तुम लोग तो आजमाइश तुम्हारी आजमाइश की जा रही है, तुम्हारी जो तुम्हारे बद अमाल हो चुके हैं वो आमाल नामा अल्लाह का लिखा हुआ है और इस वक्त तुम्हारी आजमाइश की जा रही है, अल्लाह सुब्हान तआला ने ऊँटनी भेजी और जिस तरीके से तुम पर जब आने वाला अज़ाब और तुमने उसको हलाक करा, इससे तुम आजमाए गए हो। वो काना फिल मदीनती तिसअतुन रहती युफसीदुन फिल अर्द वला युस्लहून, और उस कौम में 9 सरदार कबाइल थे जो ज़मीन में फसाद फैलाया करते थे और इस्लाह का कोई काम अंजाम नहीं देते थे। तो इसमें लगा रहती उसको कहते हैं कि कोई गिरोह हो जो कि 10 से कम हो, बास का कहना है कि 40 से और 40 से कम का गिरोह को रहती कहते हैं। तो जो आयत आई है वो काना फिर मदीने थे तिस अदु रहती, मतलब कि वहाँ पर 9 लोग थे जो कि बदबख्त लोग थे, तो उन्होंने क्या करा था ज़मीन में जो फसाद किया करते थे वो इस्लाह से कोई काम अंजाम नहीं देते थे, ये साले सलाम के खिलाफ थे लोग और सरकश लोग थे वो, और ये लोग 9 लोग थे। तो उन्होंने क्या कहा आगे आयत में आता है कालू तकासिमु बिल्लाह है لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما माँ शहीदना महली की अहली ही वह इन्ना लसा देखूँ, उन्होंने ये तय किया कि खुदा की कसम खाकर कि अहद कर लो कि हम साले और उनके घर वालों पर शक खून मारेंगे और उनके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान को की हलाकत के वक्त मौजूद न थे और हम अपनी बात में सच्चे हैं। इस तरह से उन्होंने चाल चली, इन्हों लोग जमा हुए, कहा कि हम रात के वक्त इनको सबको ख़त्म कर देंगे और खुदा ये कसम खाए इसके लिए, और कहा कि बाद में जब इनके बली आएंगे तो हम कह देंगे उसे कि हम इनके हलाकत के वक्त मौजूद न थे। इतनी सख्त चाल चले वो, क्या कि साले अलैहिस्सलाम पहाड़ में जाकर रात में अल्लाह की इबादत करते थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि जब रात में जाएंगे इबादत करने तो वो पहाड़ के मैं छुप गए, कहा कि इनको रात में नहीं खत्म कर देंगे और रात और रात घर जाके घर वालों को खत्म कर देंगे और सुबह में जब उनके वली आएंगे तब कहेंगे हम तो मौजूद ही नहीं थे। मकरू मकरम व मकरना मकरम व हम ला यशरून, उन्होंने अपनी चाल चली चलनी चाही और हमने अपनी तदबीर की जिसकी उन्होंने को खबर तक न थी, तो उन्होंने चाल चली तो अल्लाह ने कहा कि हमने भी चाल चली और उसकी खबर उनको न थी। तो क्या चाल चली उन लोगों ने कि जब रात में आएंगे तो हम हलाक कर देंगे, तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह की तदबीर ये थी कि जब ये पहाड़ के वहाँ बैठे हुए थे इंतज़ार करते हुए, तफसीर में लिखा हुआ तफसीर अबूर में कि बड़ी चट्टान आई और सबका काम खत्म कर दिया, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला मेरे साथ। देखिए अल्लाह की ताकत, तो क्या मतलब तर्जुमा सुने, उन्होंने अपनी चाल चलनी चाही और हमने अपनी तदबीर की जिसकी उन्हें खबर तक न थी। फंजुर के का कान आके वो मकरही इन्ना दमरना हम कौम हम अजमाई, और अब देख लो कि हमने उनकी चाल का अंजाम क्या हुआ कि हमने उन लोगों को और उनके पूरी कौम को तबाह करके रख दिया। कहा कि इस तरह के तो वो तबाह हुए, फिर बाद में अल्लाह ताला ने फिर पूरी कौम को ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्होंने अल्लाह से इस्तग़फ़ार न करी, पूरी कौम ख़त्म हो गई। और वो शेर आज भी मौजूद है, आप जाएँ सऊदी में, हालांकि वहाँ लोग जाते नहीं क्योंकि उस जगह अजाब आया था, लेकिन वो शेर आज ही मौजूद है और आज भी वो घर खाली पड़े। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा उसके बाद जब कौम नाबूद हो गई, वो तिलका बुयूतुहुम खावियतुन बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यअलमून, तो ये बस उनके घर इस बिना पर खाली पड़े कि उन्होंने जुल्म किया था, क्योंकि यकीनन इसमें निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। खाली पड़ने घर खाली पड़े, आज भी सऊदी में जो पहाड़ों में तराश है उनके घर वीरान पड़े हुए हैं, वो हर एक के लिए इबरत है। वह अंजैन लदीना आमनु व कानू यत्तकून, और हमने अपने मोमिन को निजात दी जो साहेबान तकवा थे उनको निजात मिली। वलूतन इत काला ने कौम ही अतून फाहिशता व अंतुम तुबसिरून, और जब लूत ने अपनी कौम से कहा था कि तुम जानते बूझते हुए बदकारी का इर्तकाब करते हो, और इसमें है कि तुबसिरून के तुम देखते हो उसको, मतलब क्या कहा कि तुम फाहिश काम करते हो, फाहिश काम करते हो, मर्द मर्द के पास जाते हैं इसको फाहिश कहते हैं, फाशा कहते हैं, क्योंकि जब मर्द की उम्र से शादी होती है तो वो फाशा नहीं, उसके अंदर अल्लाह ने सकीना रखा है, पीस रखी है और उसमें बरकत रखी है, लेकिन मर्द का मर्द के पास जाना फाहिश है, ये लस्ट है, ये शैतान है। तो कहा गया तुम ये करते हो, तुम तुबसिरो यानी तुम देखते हो दूसरे को करते हुए, अगर तुम्हें देखते हो दूसरे करते हुए इन्नकुम लतक्तून रिजाल शहवतम मिन दूनी निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून, तुम अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, तुम लोग जाहिल कौम हो, कहा कि तुम अपनी नफसी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, तुम लोग जाहिल हो। जाहिल इसलिए कहा कि उनको मालूम था अबू तो अलैहिस्सलाम को ये कौम सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये फहाशा के अपने नफ्स कितने गुलाम बन चुके हैं, सुधरने वाली है। तो क्या उन्होंने जवाब दिया? फमा काना जवाब ओम ही इल्ला अंकालू अखरेजू आल लूतुन मिन करियतिकुम इन्नहुम उनासुन यतताहरून। उस कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कि लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो, ये बड़े पाक बाज बनते हैं। तो कहा इनको यहां से निकाल बाहर करो क्योंकि ये पाक सा बनना चाहते हैं। आज भी देखें आप इस वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बीमारी, ये इस तरह से मर्द का मर्द के पास जाना, औरतों का औरतों के पास जाना, ये बीमारी हर जगह आम हो गई है। मोमिनीन अपने आप को बचा के रखें इस शैतान से, इस फितने से। अपने बच्चों को कुरान बचपन से पढ़ाएं, इनके घुट्टी पिलाएं कुरान को, ये आयतें सुनाएं बच्चों को ताकि बच्चे सुधरें, ताकि बच्चे इस स्कूल के ख़राब माहौल से, माशरे के ख़राब माहौल से बच के इन आयतों को पढ़ें। हमको चाहिए, वालदैन को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं आए। فَأَنْجَيْنَا هُوَ أَلَوْ إِلَّا أَمْرَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ। تو ہم نے لوط اور ان کی اہل خانہ کو نجات دی، وہی سوائے ان کی بیوی کے پیچھے رہ جانا ہم نے اس کا مقدر کر رکھا تھا۔ تو لوط علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ تو نیک تھے، باقی ان کی جو بیوی تھی وہ اسی قوم کی تھی، تو اس نے قوم کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ عذاب بھیجا۔ وہ امتر نہ علیہ مترا فسا مکر منظرین، اور ہم نے ان لوگوں پر برسات کی ہے، پتھروں کی برسات کی جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، تو ان کے حق میں وہ بہت بری برسات تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ پتھر، پہلے تو ان پہ وہ زلزلہ آیا، اس کے بعد پتھر برسایا اللہ نے، اتنے برسایا کہ پوری بستی چھپ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس بستی کا نشان مٹا دینا چاہتا تھا تاکہ۔ اور اللہ نے دوسری آیت میں کہا قرآن کہ ہم نے بستی آج بھی کہ وہ بستی کی طرف اشارہ کرا کہ تم اس سے لو عبرت لو کہ کس طرح سے ہم نے اس طرح کی حرکت کرنے والے ساتھ ان کا کیا انجام کرا تھا۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ آیتیں پڑھائیں تاکہ اس بیماری سے بچے، یہ بیماری چو طرف پھیل رہی ہے۔ اس وقت آخری زمانہ مومنین، اس وقت حلال حرام ہو جائے گا اور حرام حلال ہو جائے گا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن کی آیتیں آپ گھر میں بچوں کے ساتھ پڑھائیں، آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، آپ ہی نہیں سنیں گے مولانا ہی پڑھائیں گے جا کے، نہیں، گھر میں آپ خود پڑھائیں، خود قرآن پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں تاکہ اس طرح سے وہ اللہ کی معرفت لیں، مولا کی معرفت لیں، طہارت نجاست کی معرفت لیں، ہمارے عقائد کیا کی معرفت لیں۔ کیونکہ سوسائٹی اتنی گندی ہے اور اتنی آلودہ ہے کہ وہ حرام کو حلال دکھاتی ہے، حلال کو حرام دکھاتی ہے۔ اب ہمارے اللہ سے دعا ہے حق پہ محمد علیہ طاہرین کے ہم لوگ اپنے آپ کو پاک اور طاہر کریں اور ہم اس لائق ہوں کہ امام کی فوج میں شامل ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ مولا کا ظہور جلد ہو تاکہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں۔ وہ حسین جو کہ نبی کا پیارا حسین، وہ حسین جو فاطمہ کا دلارا حسین، وہ حسین جو علی کی آنکھوں کا تارا حسین، حسین وہ جو حسن کا بھائی، حسین وہ جو علی کے ذمہ عابدین کا والد، وہ حسین جو ہمارے دل کا حسین، حسین کے بغیر مجلس پوری نہیں ہوتی۔ مومن ہمیشہ حسین کو یاد کرو، حسین کو یاد کرو، حسین ہماری زندگی ہے اور حسین کے خون میں رونا ہمارے لیے حیات ہے۔ حسین کا ماتم ہم روز کرے تو کم ہے۔ اللہ رحم و کرم، الحمدللہ رب العالمین۔